और नंद नंद मुस्कान और तेरे मोदी बजा रहे हैं। राधिका जी के रसिक कृष्ण हमारे ऊपर ने पिता कृष्ण पूछा क्या चाहिए, तो कहती मेरी पिता चाहिए नहीं, तो प्रिया शरण थी उनका, आपकी जो प्रिया जी हैं उनके चरणों की किंकरी आप मुझे बनाए, जिसकी आप सेवा खुद करते हैं उसी की सेवा मैं प्रदान की। प्राणनाथ विषभान नंदिनी श्री मुखाजलोलगर महान नंदिनी के आप प्राण नाथ हैं और साथ ही साथ आपकी भी प्राण वो है श्रीमती राधिका श्री मुखाद्य रस लोक सदगत उनके सौंदर्य रूपी मधु उनके प्रेम रूपी मधु का पान करने के लिए आप गमत शरण है। यदि आप उस पर सचमुच ही प्रसन्न है तो श्रीमती राधिका जी के चरण के तले हमारी स्थिति हो और जन्म जन्मांतर तक मैं श्रीमती राधिका जी की सेवा करूं, इसीलिए आपका मैं करूंगा। ब्रज महेंद्र नंदन, ब्रज के महेंद्र कौन है, उनके आत्मीय नंदन नंदन, मैं संविधायक दशमी तीर्ण, मैं अपने दांतों के तले तीर्ण धारण करके तीन दांतों पर और गले में कपड़े धारण करके नंदन, हे मोहन आपकी जो सबसे प्रिया अति बल्लभा प्राण बल्लभा जो आपकी श्रीमती राधिका जी हैं, जन्म जन्म में हमारी मधीश्वरी किया हमारी ईश्वरी, वे जन्म जन्मांतर में हमारी ईश्वरी हो, हमारी जीवितेश्वरी हो, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं मानता। यदि कृष्ण ऐसा सुनेंगे किसी के हृदय में ऐसी एकांतिक भावना है तो बस ही दूर हो जाएंगे और परम दुर्लभ चीज जो किसी को नहीं देते वो राधा जी का दास्य उसको प्रदान कर सकते, इससे बढ़कर के कोई भी प्रार्थना किसी परमान नहीं है, विशेष करके आज के आप लोग भी किसी प्रकार से प्रार्थना करें। संसार के जितने पचड़े झगड़े लगड़े सब छोड़िए, एकांतिक रूप में भगवान का किसी चीज की यदि ऐसी एकांतिक भक्ति होगी तो कृष्ण तुम्हारे दरवाजे पर आकर के कहेंगे कि तुमको क्या दूं, घर में पानी भर देंगे, सिर पर उठा करके टोकरी में जो चाहोगे दे देंगे, फिर लड़ाई करने की राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं। यही महापुरुष जी की शिक्षा है, भागवत की यही शिक्षा है और कोई शिक्षा नहीं, और कितने भी चीजें जंजाल हृदय में है आज के दिन निकाल कर देखें तो और बस केवल एकांतिक रूप में कृष्ण के चरणों का प्रणाम होता है, राधा जी की सेवा करेंगे, यही हम पूछेंगे। जितने जंजाल है सब निकाल, वैष्णव की निंदा से सब का दूर। वैष्णव यदि अपिक्षेत दुराचार भी हो, दुराचारी से दुराचारी भी है, कभी चिरकारी नहीं मार, उसकी उसका उपहास न करो, नहीं तो भगवान नहीं सह सकते। उसको दंड देंगे, उसको जैसे करेंगे वो लाएंगे रास्ते, वो उसके प्रभु है, हम तुम उसके प्रभु नहीं है। मार ऐसा सोच करके बस भजन करो और ऐसी प्रार्थना करो, ऐसे सत्संग में रहो जो कि ऐसी बातें मिल सके। अकेले भजन जो इसे करके कलयुग में नहीं है, ठीक है बेटू भजन अलाउ नेवर बी कैन डू सो इन दी एसोसिएशन ऑफ प्योर वैष्णव बट दैट नथिंग नो मान नो मोडी नथिंग मलिक प्रसाद श्रीमती राधिका मलिक सो दिस टू ट्राई टू गिव अप ऑल द बैड थिंग्स एलिमेंट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग and to do vrathan in the guidance of your Krishna. Aaj kal kali yug mein shuddh bhajan karne wale guru aur vaishnava bahut kam hai, bahut kam hai, is cheez ko samjh lo. Isliye shuddh vaishnava ke anugrah mein is radha krishna jugal ka abhishek karke radha dasi ke liye bhajan lo. Chaitanya Mahaprabhu ki line mein aur vishesh karke rup goswami ke vichar और स्वामी के विचारों में हमारे गुरु वर्गों के विचार में कलयुग में विशेष करके भक्ति गुरु ठाकुर और श्री प्रभु का भक्ति सिद्धांत सरस्वती के इनके आंदोलन में भजन हो और कोई लालसा पाइस इच्छा कुछ मत रखो, तभी हम लोगों का यह साफ हो, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद में हम लोग
चिंतामणि
Oh.
ब्रह्मा जी भजन कर रहे हैं, स्तव कर रहे हैं कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ को दक्षिण जब गए थे तो वहां से लाए और प्रत्येक वैष्णव को दिया और उन्होंने उसकी नकल कर ली और प्रत्येक वैष्णव को ये पूरा स्तोत्र गोविंद स्तोत्रम याद था, प्रतिदिन लोग करते थे। ब्रह्मा जी कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं जो पहले के तीन के श्लोकों में बदलाया गया, विशेष करके पेणु पड़ंतम, पेणु बजा रहे, पड़ंतम पड़ंतम माने क्या, बजाना
बजाना, कम धातु बजाना,
उससे सुंदर सुंदर
मूर्छना
और अरविंद दलाय अर्थाक्ष कमल जैसे नए हैं, बराव तंसम मयूर कुछ अशितांग पीतांबर और सुंदर अंग उनके हैं, कंदर्प कोटि कमलीय, कंदर्प कोटि कंदर्प के भी कंदर्प कृष्ण जब गोपियों के साथ में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम साधक लोग जिस भाव से विभावित हो करके और कृष्ण का भजन करते हैं ठीक उसी रूप में वो वैसा ही रूप ऐसे ही महिमा वो माने महिमा या भाव आसन स्थिति आसन मन यहाँ पर वृंदावन वृंदावन में भी कहा राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन रास ये सब आसन ज्ञान दूसरा दूसरा मैंने जैसे वो भजन करते हैं जिस भाव में विभावित होकर के गोपी भाव से तो गोपियों भाव का सब कुछ सख्य भाव से तो सख्य भाव सुप्तैव जमेव निगम प्रतिचयस्तुवन्ति अरे निगम भी वेद इत्यादि में जो कहे गए हैं उस सूक्तों से सब समय ये अमल करते हैं कौन सा जैसे कि श्रुति श्रुति में श्रुति स्तंभ में वो श्लोक
जय 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 राम मजी तो दोष गभी तक दोष गभी तक हो राम
और अरे जो वैसा ही पा करके और वो भजन करने के लिए वो चेष्टा करते हैं भुजदंड जैसे पीस चढ़ने पर हो जाता है ऐसे कृष्ण के भुजदंड को प्राप्त करने के लिए गले में गोपियों जैसे ये श्रुतियां भी उसी भाव में विभावित होकर के उनका भजन करके उनको पाया तो ऐसे ऐसे सूक्तों के द्वारा ये लोग उनकी स्तव करते हैं गोविंदवादि पुरुषम तम आनंद उनके रूप में कला में उन रूपों में कभी कला और कभी कला के भी कला के रूप में वो विराजमान रहते हैं, इसलिए उनको एक तरह से अचिंत भेदाभेद युक्त कृष्ण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट रूप में ब्रह्मा जी उनकी तौर स्थिति करते हुए बतला रहे हैं कि राम आदि मूर्तियां जो हैं वो कला, कला किसको कहते हैं, अंश के अंश को, इसलिए इसको ये मत समझिए जिसे राम की अवमानना की गई है, राम की अवमानना नहीं की गई बल्कि स्तुति की गई है। नाना अवतार परोश गणेश, नाना अवतारों में जगत का कल्याण करने वाले ये स्वयं कृष्ण है, यही परम पुरुष और गोविंद है, इन आदि पुरुष गोविंद की मैं भजन
करता हूँ।
क्रोध काम सहजा प्रणयादि वात्सल्यमो दुर्गौ रवदेहभावै सञ्चीरतस्य सतीं तनुमा पुरे ते गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि।
जन काम क्रोध ब्रह्मा जी बड़े भाव में विवल होकर के करते हैं, जन क्रोध यशोदा मैया ने उनको बांध दिया रस्सी में और बांध रही है तो कैसा क्रोध, दांत कर्म कर रहे हैं और उसको तोड़ दिया,
मट्टी को
तोड़ दिया, कैसे श्यामान उनका क्रोध हो रहा है, तो ऐसे भाव को लेकर के जो भजन करने वाले हैं गोपियों के साथ में रास में प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का नाम यहाँ पर काम है, उस काम भाव से सहज प्रणय आदि की सहज प्रणय के रूप में और वह क्रोध को ले लो जिस प्रकार से शिशुपाल भंग क्रोध में कौन
शिशुपाल निंदा की
क्रोध किया था तो क्रोध तो ये सब भाव से भी यदि कोई क्रोध से हिंसा से द्वेष से भी कृष्ण से का यदि स्मरण करे तो उनका यह भाव दूर हो जाता है और उनको अंततः मुक्ति तक दे देते हैं इस भाव से भी। और सहज काम जो है तो गोपियों के भाव हो गए, उसे कृष्ण प्रसिद्ध हो जाते हैं। प्रणय आदि भीति सखाओं का प्रणय इत्यादि भीति यशोदा वाला भीति बात्सल्य का भाव मोह माने का यहाँ मोह से जैसे कि गोपियों के वशीभूत होकर मुग्ध हो जाते हैं ये मोह। गुरु गौरव जैसे नंद बाबा का भाव यशोदा का भाव बलदेव जी का भाव सेव्य भाव सेवक भाव से भी संचिंत्य इन किसी भी रूप से बदला है छ रूप कौन कौन भया किसी भाव से क्रोध भी हो काम भी हो कैसा भी हो, यदि काम एक तरह से ठीक ही काम गुब्जा को काम हुआ और काम से भी भगवान को पा लिया वो साधारणी गति के अंदर में आ गई और हो सकता है कि उसको समझ करते छोड़ करते फिर गोपियों के अनुगत में कुछ आगे बढ़ गए। तो काम भाव से भी क्रोध से भी भय से भी किसी भी भाव से बंधु भाव से ब्रजवासियों के जो प्रणय इत्यादि जो भाव है संबंध युक्त जो है इन किसी भी भाव से यदि उनका उनके अनुगत्य में भजन किया जाए तो क्या होगा, तस्य सदृशी तनु मापो उनके चिंतन करते 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 वैसा ही शरीर गोपी के धार से या जिस रूप में रहेगा उस रूप में प्राप्त होकर के
तनु प्राप्त होगा।
ब्रह्मा जी तब तुम जानते हैं ये, इसलिए हम लोग अपने गुण में साधन प्राण अब क्या मत करना। ये जो तुम ब्रह्मा जी जो दास रस के ये भक्त है ऐसा मत समझना। ऐसे जो गोविंद जो देने वाले हैं गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजन उनका हम भजन करते हैं। ये पंचतत्व
संबंध नहीं,
उसमें निष्ठा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, उनको वो नहीं बदला देता। इसलिए आप सबके जानने वाले हैं, गुरु जी की सेवा करके और रहस्य को सुनने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करके हमें समस्त शास्त्रों का जो सार है पुरुषां एकांततस्य मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए जो कल्याण है आप उसे अपनाएं। कलयुग में प्राय बहुत कम आयु है, इस कलयुग के लोगों की उम्र बहुत कम है, मंद सब प्रकार से भाग्य से मंद है, मंद मतलब बुद्धि भी बड़ी कुंठित है, किंतु कुंठी ऐसी है, कुंठी ऐसी कम बुद्धि है कि अपने को समझते कि अब हमसे बुद्धिमान अब कोई है नहीं। मूर्खता का लक्षण क्या है, जो ये कहता है कि मुझसे बढ़कर के अब कोई नहीं, वही सबसे मूर्ख है। कलयुग में विशेष कर वो अपने गुरु की भी बात को नहीं मानते, और मंद भाग्य बड़े मंद भाग्य पत्रता और सब समय पत्र तरह तरह की समस्या तरह तरह के हो ये जानते हैं। भूमि कर्म जन्म से उनके बड़े बड़े कर्म है, ये हमारा प्रमाण कर्म है जन्म लेकर, कोई कर्म से मतलब नहीं किंतु इसको समझ लगा ये हमारा प्रधान कर्म। गुरु को उपदेश देंगे, उपदेश देंगे गुरु जी, हमारा ये प्रधान कर्म है। कर्मायु श्रोतव्यानि और बहुत सुनने के लिए और सुनने के लिए उनके पास गुरु जी से सुनने का मौका नहीं है उनको। अतः साधो हे साधो, साधु माने क्या, भगवान का जो सत्य जो भगवान है, त्रिसत्य है, सत्य की जोड़ी है, ऐसे भगवान का आश्रय करने वाले जो साधु है, आप साधु हैं, इसलिए अपनी बुद्धि से गुरु के अनुगत में रह करके जो कि समस्त शास्त्रों का सार आपने ग्रहण किया है, गुरु ही हम लोग सब भालू है, आप कृपा करके बदलाइए जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न होने के बाद उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके और तब फिर उन्होंने कहना आरंभ किया। कथा के माध्यम से भगवान प्रसन्न होकर के कानों से हृदय में पहुंच गया और उसके सारे नटों को दूर होकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं और जो कुछ करिए होता है कर देते हैं, किंतु जो शरण आ गए प्रकार से यदि कुछ अनर्थ भी रह गया तो अनर्थ थोड़े से में तो क्या है इसको भगवान की नित्य सेवा, भागवत की सेवा और भागवत जो काटने वाले हैं उनकी सेवा मेरे गुरु, उनकी सेवा करते 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 सब लोग पूर्ण अनर्थ को दूर कर जाते हैं और कृष्ण की भक्ति उनके हृदय में, ये श्रीमद भागवत का फल है और कृष्ण के चरण में भक्ति लगती है। कहते कहते उन्होंने दसम स्कंद आरंभ किया, इसमें और लीलाओं का वर्णन किया। सबसे पहले वर्णन किया नाद और व्यास का संवाद, जिसमें गुरु और शिष्य का संवाद, गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु हो तो नारद के जैसा और शिष्य का
रसानंद ब्रह्मचारी जी ने कहा जीव में संपूर्ण देह आश्रय गुरु, जीव में कितने गुरु हैं,
50 गुण उन्होंने पूरी मान लो,
रहने दो
बैठिए तो
आप अब जो बैठ
तेज गए
तो जीव में 50 गुण
उन्होंने पूरी मान लो
अनु परिमाण बताई जाता है उसमें है कि नहीं है, उसमें नहीं है। इसके बाद में 55 गुण शंकर ब्रह्मा इत्यादि विशेष
देवताओं में
वो भी बुद्ध बुद्ध रूप है, उसमें भी हतारीगत गाय नहीं है। अब तुम ही किया बात
नहीं तो
नहीं आ रहा तुम लोग को सुनने की जरूरत है, तुम लोग बहुत कुछ सुन लिया।
बाहर का साउंड बॉक्स लगता है बंद है,
साउंड बॉक्स से ही सुना। तो इसके बाद में साठ गुरु ये है नारायण इत्यादि भगवत अवतार के। ये साठ गुण में कौन कौन से हैं? इसमें सहकारी गतिदायक है कि नहीं
होना चाहिए
किसी में? हाँ, तो इसलिए सब भगवत तत्व में सहकारी
गतिदायक
है। समझ में आया? इसलिए ऐसा मत कहो जैसे क्यों कृष्ण में हटारी करता है। दूसरी बात फिर एक समझो, हटारी का जो गाय ये सब विष्णु तत्व भगवत तत्व है और पार तत्व, किंतु गति कौन सी वो दे सकते हैं इस पर अब विचार। कृष्ण में संपूर्ण रूप में है और तत्व में भगवत तत्व में मारने के बाद में उनकी मुक्ति नहीं होगी, फिर से उनका जन्म होगा। तो कृष्ण जिसको मारेंगे उसकी फिर गति उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो फिर जगत में नहीं आएगा। जैसे रावण कुंभकर्ण ये फिर से जन्मे, हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष से फिर से आए, किंतु कृष्ण ने जब
शिशुपाल दंतवक्र को मारा
मुक्ति मार करके तब फिर वो जन्म लेकर के फिर नहीं आया। तो भतारी गति चाहे किसको कहते हैं जन्म लेकर के वो लोग मरने के बाद में उनके हाथों से मरने के बाद में गति होगी क्या? उच्च कुल में जन्म लेंगे, धनी संपन्न महा पराक्रमी ये सब जो गतियां है देख मिल गए, किंतु मुक्ति नहीं मिले। और कृष्ण में क्या है, मुक्ति तो मिल ही जाएगी मरने पर। यहाँ तक कि जो लोग महाभारत के युद्ध में अर्जुन भीम और दूसरों के हाथों से भी मारे गए, यहाँ तक कि पांडवों के पक्ष के जितने वीर थे वो कौरवों के द्वारा भीष्म पितामह के द्वारा मारे गए या कर्ण के द्वारा मारे गए, किंतु कृष्ण का प्रश्न किया मरते समय में उनकी क्या हुई?
उद्धार हो गया।
तुषार के इत्यादि ये क्या प्रकार की मुक्ति आ गई, कृष्ण को मारने की भी जरूरत से ऊपर ये समितियाँ हमको अपने आने आती उनको प्राप्त हो जाती है। कृष्ण में विशेषता ये है कि इच्छा करने पर और उसके भावना के अनुसार में यदि थोड़ा भी कुछ थोड़ी सी भी उसकी भावना अच्छी रहे तो उतना जैसे गति उतना को भाग उचित गति थी नल खुबर क्या गति भी वहाँ पर उनको उनका उद्धार किया। वैसे पेट टूट गया तो मर गया, तो मरना ही हुआ, शरीर तो छूट गया उसका, किंतु गति कहाँ तक हुई?
ब्रज में,
ब्रज में प्रेम की गति उन्होंने। इसी तरह से इस विषय को समझना चाहिए। दूसरी बात, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं ऐश्वर्य पूर्ण हो, ऐश्वर्यमय लीला हो या माधुर्यमय लीला हो, उसके बड़े बड़े गूढ़ रहस्य और शिक्षाएं। एक साधारण सी देखो, कालिय दमन लीला, कालिय नाम उसका नाम किस लिए हुआ? काल से कालिय, जीवों के लिए वो काल था, कोई भी उसे बचना बड़ा भारी कठिन था, वो कालिक था। किंतु उस लीला के पीछे क्या छिपा हुआ है? कालिय कहाँ रहता था? जमुना जी के कौन से रत में रहता था?
जमुना से लिंक नहीं था,
सौभरी ऋषि तपस्या करते। इस बात चीज को समझो, आराधना और तपस्या में बहुत अंतर है। गौड़ीय वैष्णव लोग तपस्या नहीं करते, क्या करते हैं?
आराधना करते हैं।
आराधना राध मैंने
कृति विधान करो,
कृति विधान कर। और तपस्या मैंने क्या? अपने शरीर को कष्ट दे। कैसे कष्ट देना? मैया ने बेटे को एक तमाशा कर दिया और बेटा उन्हें लगा बड़ा उसको क्रोध हुआ, खाना पीना छोड़ दिया। ये खाना पाना छोड़ना क्या हुआ?
तपस्या
हुआ ना। अपने शरीर को इतना कष्ट देने लगा कि माता से रहा नहीं जाता, बेटा को खा लो बेटा खा लो, अब तुम्हें नहीं मारूंगी। क्योंकि खाता नहीं, एक दिन नहीं खाएगा, दो दिन, दूसरे दिन नहीं खाएगा तो क्या होगा?
माता का हृदय विकल हो जाएगा।
उसके पिताजी आएंगे कहीं तुमने क्यों उसको
मारा, क्यों मारा?
और पिता भी मनाएंगे, घर वाले सभी लोग मनाएंगे, मैया मनाएगी, मैया कहेगी तू नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। इसको कहते हैं तपस्या। तो जो लोग अपने तपस्या से भगवान को बाध्य करना चाहते हैं वो भगवान तपस्या के द्वारा बाधित नहीं होते, वो आराधना के द्वारा। और देवता लोग हैं तपस्या से बाध्य हो जाएंगे, ब्रह्मा
इत्यादि,
किन्तु भगवान तपस्या से नहीं प्रसन्न है। तो सौभरी नामक ऋषि जमुना के रथ में तपस्या कर रहा था, माने क्या कर रहा था?
अपने सूर्य को कष्ट दे रहे,
मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, चाहे ठंड में मर जाऊं जल में खड़ा रहूंगा, बस इतने पानी में खड़े रहते नंद धड़ंग, चाहे वर्षा हो गर्मी हो, और किसी से बातचीत नहीं करते, चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करते। क्यों? इसलिए कि उनको जितनी प्रकार की सिद्धियां हैं मिल जाए, मैं मरू नहीं चाहती, छोटा रूप धारण कर लू, हम जाए लोगों को कह दें तो ये हो जाए, कोई मर जाए कोई जीवित हो जाए, कि जैसे रूप वैसा, एक बूढ़े तो हो गए थे किंतु 50 रूप धारण करके समझाता कि 50 लड़कियों से शादी, ये है तपस्या का फल। तपस्या कर रहे थे, कुछ कुछ तपस्या जितनी कठिन हो जाती थी उनको फल भी कुछ मिल जाता था, सिद्धियां होने लगी, और सिद्धियों में गुमान उनको हो गया, सिद्धि में ऐसा ही होता अहंकार हो गया। आराधना में अहंकार नहीं होता, पहले शरणागत हो जाता है, और तपस्या में शरणागत नहीं होता, इसलिए उसको अभिमान होने का चांस होता है, इनको अभिमान हो गया। एक दिन गरुड़ जी स्वभाव अवस्था कृष्ण की लीला भूमि ब्रज का दर्शन करने के लिए आए, और उन्होंने देखा कि सौभरी जिस रथ में तपस्या कर रहे हैं वहां पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी स्वादिष्ट मछलियां हैं। स्वभावतः शरीर के स्वभावतः से उन्होंने एक मछली के पति को, बहुत से मछलियां तो एक पति को उन्होंने पकड़ लिया, स्वाभाविक उनके लिए दोष नहीं है, क्योंकि भगवान के पास परिसर है, पार्षद है, इससे वो भक्ति जिसको वो खा जाएंगे उसकी भी मुक्ति हो
जाएगी।
किंतु सौभरी नहीं समझे, उनको उस तालाब की मछलियों से और मच्छों से बड़ी प्रीति आसक्ति हो गई थी, क्योंकि हजारों वर्ष तक 50,000 वर्ष में आती थी, हम मथुरा में कितने दिन से हैं, 54 अब यहाँ के लोगों से प्रीति हो गई है, हो गई है कि नहीं? कोई तो सुन तुर्क होता है तो हम भी आ जाते हैं उसमें, तो ये हम लोग तो आराधना कर रहे हैं तभी लोगों से प्रीति और संबंध हो गया, कि आज हजारों लोग जिसकी गिनती नहीं यहाँ पर प्रसाद पाने के लिए आए, नगर संकीर्तन के लिए गए, लाख रुपया खर्चा करने पर भी ये चीजें नहीं, और हमारे कहने से थोड़ा सा हम नहीं कहेंगे तो अभी नाम के लिए आ जाते, क्यों? परस्पर चुकी है, किसी को कोई रोग हो जाता है तो उसके घर में जाते हैं, कोई मर जाता है तो उसके घर में संतरण देने के लिए जाते हैं, हमको क्या जरूरत है, कृष्ण से समझ में, किंतु अभी कुछ कमी है, इसलिए सौभरी जी तपस्या जो कर रहे थे मछलियों से तैयार हो गया, और जब उन्होंने खा लिया उसके पति को तो मछलियों ने जाकर के उनसे नालिश किया, रोने लगी, हमारे पति को खा लिया, अब हम कैसे रहेंगे, आपके रहते हुए इतना सामर्थ्य, इतने बड़े तपस्वी प्रभावशाली और खा लिया, तो उनको हो गया क्रोध। गरुड़ को देखा जो एक कदम के ऊपर में बैठा हुआ है और बड़े शान से खा रहा है उसको, तो उस पर क्रोध आ गया, अरे गरुड़
तुम्हारे रहते में इस मछली को तू इस हिसाब से पकड़ लिया, ऐसा तो कोई करता नहीं है, तो बड़ा ठीक है। आज से इस तालाब में आएगा, एक मछली को पकड़ेगा तो तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। अब हमारी तपस्या में बल आ गया, हम जो कह देंगे तुम्हारा सिर उड़ जाएगा। तो गरुड़ जी भगवान के परिकर वो हंस करके और वहां से चले। अच्छा हम नहीं जाएंगे, किंतु जानते हो जहाँ पर भगवान के परिकर नहीं आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? जिस घर में वैष्णव नहीं गया है क्या होगा? घर अमंगल,
श्मशान
भूतों का घर हो जाएगा, श्मशान भूमि हो जाएगी। गरुड़ हंसते हुए उस स्थान को छोड़ दिया, हुआ क्या? अमंगल। अब मछलियों के साथ में रहने से उनके जब बच्चे होते तो उसको देखते तो इनको बच्चा पैदा करने की इच्छा होती। ये गरुड़ जी के प्रति कुछ
अपराध
अपराध होने से ही आशा हुआ। आज तक तो 50,000 वर्षों में जो नहीं हुआ, और इनके वहां से हटते ही हुआ क्या? तपस्या का बल उसको रोक नहीं सका, उसका लगन में कामना पैदा हो गई और तपस्या का कुछ फल ही था ही। उन्होंने खूब सुंदर बना करके मन दाता के कन्याओं से 50 कन्याओं से शादी की और हजारों वर्ष तक उनके साथ में रहे। उनके बेटे नाती पर नाती और भगवान की चिंता जो तपस्या करते थे वो भी भूल गए। थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ? उस विरुद्ध का फल क्या हुआ? जो उसके आश्रित थे सौरभी तो वहां से निकल करके चले। आप जो मछलियां उनके आश्रय में रह करके गरुड़ के प्रति कुछ दुर्भाव में आती थी, उनकी गति क्या हुई?
कालिया
मछलियों का। अब सब मछलियां उसमें, अब उसमें कोई भी प्राणी नहीं गया। जहाँ पर वैष्णव नहीं जाते हैं वो स्थान ऐसे ही हो जाता है। इसलिए वैष्णव का विरोध, वैष्णव की निंदा, खराब आदमी हो तभी मत करो, उससे बचो, नहीं तो भजन में ऐसे ही विघ्न होगा। फिर हुआ क्या? मछलियां तो गई सब मर और सौरभ ऋषि भी वहां से, क्या नाम उनका?
सौभरी ऋषि
भी वहां से विवाह करके, हाँ इतने कठोर 60,000 वर्ष या 50,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य सब गड़बड़ हो गया और उसमें लग गए। कितने औरतों के साथ विवाह, कितने वर्ष उनके चले गए। अब उनकी गति जो हुई सो हुई और इधर मछलियां भी सब। और पानी गंदा होने लगा और ब्रजवासी लोग सब कष्ट पाने लगे और उसमें एक असुर आ गया उनके धाम में। तो भगवान ने क्या किया? देखा जैसे हमारे सखाओं को कष्ट होता है, गैया मर जाती हैं इसके हवा से, तो वो पतंग पेड़ चढ़े और चढ़ करके उसमें कूदे और कूद करके कालिया का दमन किया। मार भी डालते उसको, मुक्ति ना तो करते, किंतु उनकी स्त्रियां बड़ी भक्त थी। जय की जब पत्नी जाए भक्ति दे जा रहा, जब तक ये कृष्ण का विरोध करता रहा तब तो सोच रही थी कि विधवा होना चाहे ये मर जाए। और जब कृष्ण के भार को सह नहीं सका और देखा कि मैं उससे लड़ा गरुड़ से भी, किंतु जितना को कष्ट नहीं हुआ, इस छोटी से बच्चे को मैं अपने सिर पर नहीं रख सकता और उसके मुख को मारकर लहू लुहान कर दिया, चारों तरफ से रक्त बहने लगा। सोचा ये तो मालूम होता है, हमारी पत्नियां कहती हैं ये नारायण है, तो नारायण का शरणागत हुआ और तभी तो इनके पत्नियों ने देखा कि अब ये शरणागत हो गया। तो कृष्ण से और उनकी प्रार्थना से भगवान ने किसको रक्षा करके रमणीय और इसको निर्विश कर करके अपनी विद्या के लिए। इसी तरह से भगवान की
एक एक लीला में कितने कितने उपदेश, कितने कितने शाद और रहस्य छिपे हैं, भक्त लोग उसको ढूंढ निकालते हैं। ये लोग केवल शब्द पर और श्लोक के ऊपर में नहीं चलते, उसके भीतरी मीनिंग को लेकर के कृष्ण लोग अनुभव करके और उसका फलसर को बतला देते हैं। इसलिए जा भागवत करो
राधा राधा हरे बोल।